नमस्कार श्रोता, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पुराने नियम में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आध्यात्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब परिवार के साथ कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं और मैं फिर से इस बात का स्मरण दिलाना चाहता हूं कि हम इन दिनों बाइबल में से यिर्मयाह नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने देखा कि इसराइली परमेश्वर से दूर हो गए और उन्होंने मूरत बनाकर उसकी उपासना आरंभ कर दी थी। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 4 से अध्याय 6 तक का अध्ययन करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के लिए जो आपके वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु, जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, सीखते और सुनते हैं, हमारी प्रार्थना है कि हर एक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब आपके वचन रेडियो के माध्यम से उन तक पहुंचता है तो उस पर वे विश्वास कर सकें, उस वचन के द्वारा से आप उनसे बोले और बातचीत करें, उन्हें सामर्थ और सहायता प्रदान करें। आज की इस घड़ी हम याद करते हैं उन श्रोता भाई बहनों के लिए जो बीमार हैं, निराश हैं, चिंतित और परेशान हैं, पिताजी आप उन्हें भी शांति दें। प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मित्रों, आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और यिर्मयाह की पुस्तक उसके 4 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करें, जिसका विषय है यहूदा के पथभ्रष्ट जीवन में यिर्मयाह का व्यवहार। ध्यान दीजिए कि हम उस समय का अध्ययन कर रहे हैं जब राजा योशियाह सुधार कार्य में लगा हुआ था। इस समय तक मंदिर में मूसा की व्यवस्था पाई नहीं गई थी, अतः यह सुधार कार्य था, जागृति नहीं, परंतु अभी वे गहराई में नहीं गए थे। योशियाह में निष्ठा थी और वह परमेश्वर की खोज में था। वह यिर्मयाह की बात मानता था, परंतु प्रजा सच्चे दिल से परमेश्वर की ओर नहीं फिरी थी, जबकि यिर्मयाह ने अपने भविष्यवाणियों के द्वारा वार निशाने पर किया था। यह यिर्मयाह का दूसरा संदेश ही है जो अध्याय 3 से चल रहा है और अध्याय 6 तक चलेगा। वह उनकी पथभ्रष्ट अवस्था को निशाने पर साधे हुए है, जो अध्याय 3 के 10 पद में लिखा है, इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से, यहोवा की यही वाणी है। उनमें मन फिराव केवल प्रथागत था, वे मंदिर जाते थे और रीतियों को निभाते थे, परंतु उनका मन उसमें नहीं था। योशियाह इसी का प्रयास कर रहा था। इससे प्रकट होता है कि जागृति बिना भी धर्म सुधार हो सकता है, परंतु जागृति बिना सुधार में सच्चा मन फिराव नहीं होता है। परमेश्वर के वचन में नई रुचि धर्म सुधार हो सकती है, परंतु यह मात्र सतही अनुभव है जो आज अधिकांश जनों का है। अभी यह देखना है कि उनका मन फिराव सच्चा है या नहीं। यिर्मयाह के दिनों में परमेश्वर की ओर सच्चे मन से फिरने की अपेक्षा मात्र धर्म सुधार था, जिसके कारण प्रेरित होकर यिर्मयाह ने 3 अध्याय उसके 16 से 18 पद की भविष्यवाणी की, और वह कहता है कि उन दिनों में सब जातियां यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में एकत्र होंगी। इस बात को सुनकर भी यहूदा को अपनी आराधनाएं प्रथागत नहीं रखना था, परंतु उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। परमेश्वर फिर भी उनसे आग्रह करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 3 अध्याय के 22 पद में लिखा है, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। मेरे प्रियो, अध्याय 4 के आरंभ में हम मनुष्यों द्वारा परमेश्वर की ओर फिरने के किसी भी अभियान के प्रति परमेश्वर की प्रतिक्रिया को देखते हैं। तो आइए आप मेरे साथ निकाल लीजिए यिर्मयाह की पुस्तक 4 अध्याय उसका 1 पद। लिखा है, यहोवा की यह वाणी है, हे इसराइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ, यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। परमेश्वर गंभीर रूप से उनमें रुचि रखे हुए है और वह उन्हें अपने साथ उचित संबंधों में लाना चाहता है। वह कहता है कि यदि वे उसकी ओर फिरें तो वह उन्हें देश में ही बसा रहने देगा। यिर्मयाह 4 अध्याय के 2 और 3 पद में हम पढ़ते हैं, और यदि तू सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन के शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेंगी और उसी पर घमंड करेंगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यूं कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीली झाड़ों में बीज मत बो। दूसरे शब्दों में धर्म सुधार किसी काम का नहीं है। आपको बीज बोने से पहले भूमि को तैयार करना पड़ता है। कटीली झाड़ियों में बीज डालना लाभकारी नहीं है। हमारे प्रभु यीशु ने यही बात दूसरे शब्दों में कही थी, मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 6 पद में, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। मेरे प्रियो, मैं तो यह मानता हूं कि ऐसा समय और स्थान होते हैं जब हमें परमेश्वर का वचन नहीं सुनाना है। इसमें बुद्धिमानी की बात दिखाई नहीं देती है। कभी कभी मनुष्य सुसमाचार प्रचार करता है क्योंकि वह भावनात्मक और दर्शनीय होता है। परमेश्वर कहता है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। डॉक्टर आयरनसाइड ने कहा है, अंगीकार का हल मन की कठोर भूमि पर चलाना होगा। शेष अध्याय में यहूदा वासियों का महाभियोग है। परमेश्वर उन पर पहले दंड की घोषणा करेगा, उसके पश्चात उन्हें परमेश्वर के पास लौट आने की पुकार करेगा। अंत में दंड की स्पष्ट भविष्यवाणी है, विश्वास करें। इस विषय में यिर्मयाह शब्दों को भटकने नहीं देगा। मेरे विचार में आज शांति के संदेश की अपेक्षा भविष्यद्वक्ताओं के संदेश अधिक होना चाहिए। कठोर भूमि को तोड़ना आवश्यक है। हम संकट काल में हैं। नष्ट होने में एक रात का समय लगता है। बेबीलोन एक अजय राष्ट्र था, परंतु एक ही रात में उसका पतन हुआ। सिकंदर महान एक ही रात में समाप्त हो गया और उसका साम्राज्य चूर चूर हो गया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार रोग के विनाश का कारण आंतरिक दुर्दशा था। हमारी महानता हमारे हथियारों और मुद्रा की शक्ति में नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमें पड़ती भूमि जोतना है। हम कटीली झाड़ियों में बीज गिरा रहे हैं। परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। परमेश्वर यहूदा को लौट आने का अवसर प्रदान करता है। वह आज मुझे और आपको पाप से पीछे लौटने के लिए आगाह करता है। यिर्मयाह की पुस्तक 4:4 में लिखा है, हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो। हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा न सकेगा। वे खतना करवाते थे। खतना उन्हें इस्राएली होने को दर्शाता था, परंतु परमेश्वर ने उसे मात्र एक प्रतीक स्वरूप नहीं दिया था। इसका आरोग्यता संबंधी अभिप्राय हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में इसका आत्मिक अभिप्राय था। उन्हें परमेश्वर की ओर मन फिराना था। अब यिर्मयाह उनसे कहता है कि उन्हें नष्ट करने वाला उत्तर बेबीलोन से आएगा। यिर्मयाह की पुस्तक 4:6-8 में लिखा है, सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, बिलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। यहूदा की आंखों के सामने उत्तरी राज्य के 10 गोत्री बंधुआई में गए थे। अतः यिर्मयाह कहता है कि वे उन्हें देखकर सावधान हो जाएं। परमेश्वर उत्तर दिशा में एक महान शक्ति का उदय कर रहा है और वे आकर उन्हें नष्ट कर देंगे। मेरे प्रियो, प्राकृतिक मनुष्य धार्मिकता उत्पन्न नहीं कर सकता है, इसलिए यिर्मयाह उन्हें हृदय का खतना करने को कहता है। परंतु हम देखते हैं कि वे परमेश्वर की ओर फिरना स्वीकार नहीं करते हैं। और जब कोई व्यक्ति, देश या कलीसिया परमेश्वर का त्याग करते हैं, तब परमेश्वर भी उनका और उसका त्याग कर देता है। स्मरण रखें कि प्रभु यीशु ने आकर स्वयं को उनके लिए राजा होने को दे दिया था। जब उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया तो उसने भी उन्हें छोड़ दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 23:38 में वह उनसे कहता है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार 23, आप इसे पूरा पढ़ें। यदि इसको पढ़कर आप कांप ना उठें तो फिर और कुछ नहीं हो सकता जो आपको विचलित कर पाएगा। नम्र स्वभाव ईश्वर की बात ना करें। उन्होंने उसे अपना राजा स्वीकार नहीं किया तो उसने भी उन्हें त्याग दिया। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर का त्याग करने के लिए स्वतंत्र हैं। या आपकी स्वतंत्र इच्छा है, परंतु स्मरण रखें, यदि आप परमेश्वर का त्याग करते हैं तो वह भी आपको त्याग कर देगा। वह अनुग्रहकारी है, वह भला है, वह धीरजवंत और सहनशील है। वह आपको बहुत अधिक अवसर देता है कि आप उसकी ओर फिरें, पापों से मुड़ें, परंतु यह एक दीनता का अनुभव है कि अवसर प्राप्त मनुष्य जब परमेश्वर का त्याग कर देता है, चाहे वह इसराइल हो या कलिसिया, उनका अंत क्या होता है? परमेश्वर उनका त्याग कर देता है और वे भ्रष्ट, विष्टा और नकारा समझे जाते हैं। आज जीवित परमेश्वर के अनुसरण का स्वांग मारने वाले अनेक जन हैं और वे कलीसिया के सदस्य भी हैं, परंतु हम परमेश्वर के वचन को ध्यान के केंद्र में नहीं रखते हैं। हम वास्तव में जीवित एवं सच्चे परमेश्वर का अनुसरण नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, आपको मालूम है कि रीडर्स डाइजेस्ट पत्रिका ने कभी एक लेख छापा था, पुस्तक जिसे कोई नहीं पढ़ता। वे बाइबल के बारे में कह रहे थे और मैं उनके साथ सहमत हूँ, परंतु वे लिखते हैं संक्षेप में, बाइबल की परिभाषा है लगभग 3000 वर्ष के अंतराल में अनेकों हाथों द्वारा लिखी 60 पुस्तकों का अव्यवस्थित संग्रह, जो पराया, अरुचिकर, अशिष्ट, अस्पष्ट और विवादास्पद तथा परस्पर विरोधी है। यह पुस्तक नाम की कूड़े का ढेर है। कविता का कड़ा और प्रचार कार्य, नियम और वैधानिकता, दंत कथा और अंधकार, इतिहास और उन्माद है। यह तो झूठ है मेरे प्रियो। यह लेख का लेखक परमेश्वर के वचन के विषय वस्तु को नहीं जानता है। मैं आपसे कहता हूं कि आज हम यर्मिया के युग की परिस्थितियों में हैं। देश तो परमेश्वर को त्याग चुका था, परंतु प्रजा उसके अनुसरण का ढोंग रच रही थी। ऐसे मनुष्य परमेश्वर और संसार द्वारा त्याग दिए जाते हैं। परमेश्वर के भय का नाटक नहीं किया जा सकता है, उसको मानने का स्वांग नहीं रचा जा सकता है, और फिर आशा की जाए कि मनुष्य हमें निहारे। यह परमेश्वर की व्यवस्था है। मैं जानता हूं कि आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी। यर्मिया भी अपने सेवा काल में जनमान्य नहीं था। मैं भी तुच्छ जाना जाऊंगा, परंतु मैं आपको इस पुस्तक का संदेश निष्ठापूर्वक सुनाता हूं। वे जो परमेश्वर से विमुख हो जाते हैं पाएंगे कि परमेश्वर उनसे विमुख हो गया है। इस संदेश का अवलोकन करते हुए मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें व्यक्त करता हूं। यर्मिया की पुस्तक 4 अध्याय उसके 22 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते, वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। मेरे प्रियो, यह बड़ी रोचक बात है कि हमारा देश बुद्धिमानों से मशवरा लेता है, सलाह लेता है, परंतु परमेश्वर कहता है कि वे जो उसे जानने का नाटक करते हैं और वास्तव में उसे जानते नहीं, वे मूर्ख हैं। अविश्वासी बुद्धिमान मनुष्य परमेश्वर के वचन पर विचार व्यक्त करने के लिए अयोग्य हैं। वे परमेश्वर को नहीं जानते हैं। परमेश्वर को जानने के लिए उसके वचन को जानना आवश्यक है। यह बड़ी रोचक बात है कि आप किसी लेखक को व्यक्तिगत रूप से जाने बिना उसकी पुस्तक को पढ़कर समझ सकते हैं, क्योंकि मनुष्य का लिखा मनुष्य समझ सकता है, परंतु यदि आप बाइबल की बातों को समझना चाहते हैं तो आपको उसके लेखक को समझना है और उसे अपना शिक्षक बनाना है। केवल परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को आपके लिए वास्तविक बना सकता है। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 4 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 5 में जाते हैं, जहाँ पर हम देखेंगे यर्मिया पापों को स्पष्ट व्यक्त करता है। यर्मिया की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, यरूशलेम के सड़कों में इधर उधर दौड़कर देखो, उसके चौकों में ढूंढो, यदि कोई ऐसा मिल सके जो न्याय से काम करे और सच्चाई का खोजी हो, तो तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। डायोजिनिस नामक एक वृद्ध यूनानी दार्शनिक था। वह लालटेन लेकर सड़कों पर घूम रहा था। लोगों ने उससे पूछा कि वह क्या खोज रहा है। उसने उत्तर दिया, मैं एक ईमानदार मनुष्य को खोज रहा हूं। उसे एक भी नहीं मिला। आपको भी अपने नगर में इस समस्या का सामना करना होगा। यदि कोई मिल सके तो मैं उसका पाप क्षमा करूंगा। अब्राहम ने सदोम और अमोरा के लिए लगातार निवेदन क्यों नहीं किया था? उसने 10 के बाद निवेदन करना छोड़ दिया था। परमेश्वर धर्मी जन के कारण भी उन नगरों को क्षमा कर देता, परंतु उसे उस एक व्यक्ति को वहां से निकालना पड़ा था कि उन नगरों को नष्ट करे। देखिए परमेश्वर अपने लोगों से कैसे कहता है। यर्मिया की पुस्तक 5:8 में लिखा है, वे खिलाए पिलाए बेलगाम घोड़ों के समान हो गए। वे अपने अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। आज हम व्यभिचार जैसे पाप को हमने नई नैतिकता का नाम दिया है, परंतु परमेश्वर व्यभिचार को पाप ही कहता है। वह तो पहला जल कहकर व्यंग भी करता है। वह कहता है, वे अपने पड़ोसी की स्त्री पर हिनहिनाने लगे। यह आज की सभ्यता का कैसा चित्रण है। यर्मिया की पुस्तक 5:27 में लिखा हुआ है, जैसा पिंजरा चिड़ियों से भरा हो वैसे ही उनके घर छल से भरे रहते हैं। इसी प्रकार वे बढ़ गए और धनी हो गए हैं। मेरे प्रियो, आज बच्चे अपने घर छोड़ देना चाहते हैं क्योंकि वहां की दशा बहुत बुरी है। मैंने अनेक युवाओं से बातें की हैं और मेरे विचार में यह पद सही चित्रण प्रस्तुत करता है, यहूदा नहीं सुनेगा। मेरे मित्रों, यहां पर 5 समाप्त होता है और 6 में हम देखेंगे कि यहूदा नहीं सुनेगा। 6 में यर्मिया अपने संदेश का अंत करता है। यर्मिया की पुस्तक 6:13 में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उनमें छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब लालची हैं, और क्या भविष्यद्वक्ता क्या याजक सब के सब छल से काम करते हैं। संपूर्ण देश लालच से भरा है। आज भी लालच एक बहुत बड़ा पाप है। सोना, चांदी, धन, यश, पराई स्त्री आदि मनुष्य की लालच के उद्देश्य हैं। यर्मिया की पुस्तक 6:14 में लिखा है, वे शांति है शांति ऐसा कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा करते हैं, परंतु शांति कुछ भी नहीं। जी हाँ, उनमें बदलाव तो दिख रहा था, परंतु वह केवल बाहरी दिखावा था। जैसे कैंसर पर पाउडर डाल दिया जाए और कहा जाए कि वह ठीक हो गया है। वे कहते थे शांति है, परंतु शांति वास्तव में थी ही नहीं। आज भी हम शांति की बात करते हैं, परंतु सच तो यह है कि हम युद्ध की ओर अग्रसर हैं। यर्मिया की पुस्तक 6:19 में लिखा हुआ है, हे पृथ्वी सुन, देख कि मैं इस जाति पर वह विपत्ति ले आऊंगा जो उनकी कल्पनाओं का फल है, क्योंकि इन्होंने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं लगाया और मेरी शिक्षा को इन्होंने निकम्मी जाना है। परमेश्वर के वचन को अस्वीकार करने का अर्थ था कि उन्होंने परमेश्वर का त्याग किया था। मनुष्य परमेश्वर का त्याग कर दे तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। यर्मिया की पुस्तक 6:30 में लिखा है, उनका नाम खोटी चांदी पड़ेगा क्योंकि यहोवा ने उनको खोटा पाया है। मेरे प्रियो, मूल भाषा में खोटा शब्द वही है जो त्यागना शब्द है। अतः हम पढ़ सकते हैं, त्यागी हुई चांदी, उनका नाम त्यागी हुई चांदी पड़ेगा क्योंकि यहोवा ने उनको त्याग दिया है, अर्थात त्यागा हुआ पाया है। परमेश्वर यहूदा वासियों से कहता है, तुमने मेरी व्यवस्था को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुम्हें त्याग देता हूं, और जब मैं तुम्हें त्याग दूंगा तो संसार भी तुम्हें त्याग देगा। क्या यह रोचक बात नहीं है? यर्मिया के युग में ऐसा हुआ और आज भी ऐसा ही हो रहा है। हम मनुष्य के लगाव के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु संसार हमसे प्रेम नहीं करता है क्योंकि हमने परमेश्वर को त्याग दिया है और इस कारण परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है। यह अत्यधिक पावन संदेश है, हम इसे गंभीरता से स्वीकार करें। मेरे प्रिय मित्रों, यदि आज आप परमेश्वर से दूर भाग रहे हैं, उसके वचन का इनकार कर रहे हैं, उसे आप त्याग कर रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि परमेश्वर भी एक दिन आपको त्याग देगा। संसार आपको त्याग देगी, आपके प्रियजन आपको त्याग देंगे, तब क्या होगा? आज आपके पास अवसर है कि आप यहूदा और इसराइलियों की तरह नहीं, परंतु परमेश्वर के पास फिर जाएं। वह आपके पापों को क्षमा करने के लिए तैयार है। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आप सबको आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
मार्ग में हमारे वो दर्शक रहेगा, कदम डगमगाए हाथ वो थामेगा, भटके हुओं को राह दिखाने, भटके हुओं को राह दिखाने, इस धरती पे आया है।
जीवन की रोटी।